धवला पुस्तक तीसरी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, केवलनाणुजोय्य छद्दौवमणिज्यं पवायिः, नमिऊणजिनं वणिमो दौवणियोगं गणीयसारम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड जीव स्थान नामक है, उसमें द्रव्य प्रमाणानुगम का अपना विषय चल रहा है, और ये तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 पर हम आ गए, 70। वो 70 है ना, हिंदी वाला 70, 70। गुजराती में क्या कहते
हैं?
ना ना, इसको
सिंतेर।
ठीक, अभी यहाँ हम आए हैं, हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या कहते हैं, ये नीचे शंका समाधान जो है ना, नीचे वाला बड़े बड़ी शंका, वहां से पढ़ेंगे अभी हम। ये बात ये हुई थी कि दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे गुणस्थानवर्ती जीवों का प्रमाण की बात चल रही थी, तो कहते वो प्रत्येक गुणस्थान की जीवों की संख्या पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण। तो पल्ले को जिस असंख्यात से भाग दिया है वो भागहार है, तो उसका प्रमाण उन्होंने अंतर्मूर्त कह दिया, उसी को कहेंगे अवहार काल। काल का यूनिट बनाकर उस संख्या से उसको भाग देना, बस इतनी बात है। तो ये जो अवहार काल है, तो चौथे गुणस्थान वालों का सबसे छोटा है, क्योंकि उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। इस तरह से फिर वो भागहार को यानी अवहार काल को अवली के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे, तो किसकी संख्या आई थी? तीसरे वाले की ना। हाँ, संख्यात गुणा करेंगे, ऐड नहीं करना, गुणा करना, और उसको भी असंख्यात से भागहार में बढ़ा दो तो पांचवे गुणे। जहाँ भागहार बढ़ा वहां लब्ध राशि छोटी। उल्टे क्रम से देखेंगे तो पांचवे गुणस्थानवर्ती जीव कम है, सारे असंख्यात ही है, पल्ले के असंख्यात भाग, तो उनकी संख्या कम होगी। उल्टे क्रम से अभी गिनो, उनसे साधन वालों की, उनसे तीसरे वाले की, उसके चौथे वाले की।
हम लोग देखने जाए तो मैक्सिमम तो देव और नारद ही हो गए ना असंख्यात में।
तीरंज भी आते हैं ना?
नहीं, पांचवे गुणस्थान में तीरंज तो है, मगर हाँ। चौथे गुणस्थान जो अपेक्षा देव और नारद की ज्यादा रहेंगे।
देव है, नारद के, हाँ देव सबसे ज्यादा होंगे, नारद की भी है और तीरंज भी है, सब मिलकर हो जाते हैं उनके।
उनमें कंपैरिजन करेंगे,
हाँ उनके उनमें कंपैरिजन करेंगे, वो तो बात आएगी अभी इसमें गतियों में।
तो
कौन सा? हाँ हाँ, वो क्षायिक जीवों के लिए, क्योंकि उसका भागहार नक्की करना था कि पृथक्व वर्षों में संख्यात जीव क्षायिक समय को प्राप्त करते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं सौधर्म में, तो वहाँ की आयु कितनी संख्यात पल्ल्य है। हाँ, तो उसमें कितने जीव इकट्ठे हो गए वहाँ पर, क्योंकि हर हम देखें हर 6 महीने 8 महीने में कुछ जीव जाएंगे वहाँ, 2-4-5 जाएंगे मान लेते हैं, अधिक जाएंगे, उसको संख्यात ही कहेंगे ना। तो वर्ष पृथक में संख्यात, क्योंकि देव में जाने वाले तो सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं पर भी जाएंगे, सौधर्म का वहाँ हिसाब लगाया। ऊपर वाले देवों के
नीचे गोकुल में जाते हैं ना, तो उसका उसको सबको मिलके संख्या,
यहाँ तो देवों की संख्या निकाल रहे थे हम, देवों में उत्पन्न होने की अपेक्षा से बात कर रहे थे, क्योंकि असंख्या संख्या कैसे हो सकती है, उसका भागहार कैसा निकालना है, उसके लिए बात हो रही थी। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होगी ना यहाँ, ऊपर ऊपर के देवों में भले आयु बड़ी है परंतु देवों की संख्या कम है, जो पहले दूसरे स्वर्गों के देवों की संख्या ज्यादा है, वे भी ऊपर जिसको कहेंगे ना संचय की अपेक्षा, वो तो सागरों के अनेक सागरों की आयु है, परंतु वहाँ उत्पन्न होने वाले जीव भी उतने घटे ही है ना वहाँ उत्पन्न।
तो
नहीं देखो, देवायु के लिए तो बाद में भी देवायु बांधेगा, क्योंकि समय दृष्टि देवायु ही बांधेगा, जरूरी नहीं है। आयु बंध के समय उनके कौन सी लेशा थी, कैसे परिणाम थे, उसके अनुसार आयु बनती है। शायिक हुआ इसलिए ऊपर के देव की बांधे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर के देवों के बांधने वाले तो मुनिराज होते हैं, और यहाँ तो चौथे गुणस्थान वाले शायिकों की हम संख्या निकाल रहे थे, चौथे वाले की शायिक समय दृष्टि। देखो यहाँ जो 70 पेज पर हम 70 पेज पर नीचे की शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि ये पूर्वोक्त जीवराशि यानी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या जो है अवस्थित नहीं होती। अवस्थित यानी वो कांस्टेंट उतने की उतनी नहीं रहती, उसमें हीनाधिकता होती रहती है, क्योंकि इन राशियों की हानि और वृद्धि होती रहती है। कोई साधन में आवे, कोई उसमें से कोई एक समय के लिए रहे चले जाए, कोई छावली के लिए रहे चले जाए, तो ये तो अलग अलग होगी। यदि शंका की जाए कि इन राशियों की हानि और वृद्धि नहीं होती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इन राशियों का आय और व्यय नहीं माना जाए तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, तथा अनादि अपर्यवसित रूप से सासादन आदि गुणस्थानों का काल भी नहीं पाया जाता। अनादि अपर्यवसित, पर्यवसान ने अंत, तो अनादि अनंत, ऐसा सासादन गुणस्थानों का काल नहीं है, अनादि अनंत नहीं है। जैसे मिथ्यात्व में हमेशा ही जीव पाए जाएंगे, ऐसे सासादन गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा वो तो हमेशा वो रहने वाला गुणस्थान नहीं है, अंतर पड़ता है, सांतर मार्गणा है। इसलिए भी इन राशियों के हानि और वृद्धिमान लेना चाहिए। यदि इन पूर्वोक्त राशियों को अवस्थित माना जावे तो ये भागहार बन सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये भागहार जो बताए हैं तो राशि अगर कांस्टेंट होगी तो ये होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये उसकी शंका है। शंका तो ठीक लगती है हमको, इसीलिए ऐसा इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछा है आचार्यों ने शिष्यों के मुंह से, क्योंकि अनवस्थित यानी जो हीनाधिक होती है राशियां, अनवस्थित राशियों के भागहार भी अनवस्थित रूप से ही अवस्थित होते हैं, क्या कहते हैं उसके, कभी मान लेते हैं ना सासादन गुणस्थान में एक जीव हो जाएगा तो पल्ले को हम पल्ले के भाग से देंगे, भाग देंगे तो एक जीव की संख्या आएगी, तो भागहार भी छोटे बड़े होते चले जाएंगे, ये कहना है उनको। समाधान, आगे पूर्वोक्त शंका का परिहार किया जाता है, यानी उसको अभी ये शंका तो ठीक लगती है फिर भी ये शंका को रूल आउट कर रहे हैं, क्योंकि सासादन सम्य दृष्टि आदि राशियों के त्रिकाल विषयक यानी तीन काल की अपेक्षा उत्कृष्ट संचय का आश्रय लेकर प्रमाण कहा गया। अभी हमने क्या देखा, मैंने कल ही बताया था, एट एनी पॉसिबल टाइम जो मैक्सिमम महासंख्या हो सकती है उसको यहाँ का उत्कृष्ट संचय, यानी कोई जीव सासादन में है, दूसरा कोई उसमें आ गया और तीसरा कोई आ गया और चौथा आ गया, तो ऐसा हो सकता है ना, कोई छावली तक रह रहा है वहाँ पर और थोड़े काल वाले और उसमें आ गए गिर कर उपशम समेत में से, तो जो संख्या होगी वो उत्कृष्ट संचय कहेंगे। तो त्रिकाल विषयक उत्कृष्ट संचय का आश्रय लेकर प्रमाण कहा गया है। जीवकांड में भी बीच में ऐसी एक गाथा है, उसमें ये लिखा है कि ये जो बताए जाते हैं संख्याएं वो उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है, इसे बीच में बताए उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल। इसलिए होती रहती है, परंतु ये जो बताया है मैक्सिमम एट एनी गिवन टाइम कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मैंने बताया ना कभी एक भी जीव ऐसा भी हो सकता है, कभी एक भी नहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सांतर मार्गणा है, नाना जीवों यानी अनेक जीवों की अपेक्षा से ऐसा भी समय आ सकता है कि कोई पूरे चारों गति में एक भी जीव साधन में नहीं हो। कितने काल से, एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग तक, छह अवली तक नहीं, अंतर भी इतना बड़ा है, अंतर भी इतना बड़ा है, हाँ, छह अवली का साधन का काल है वो, देखो ये सारे अंतर वगैरह सब आने वाले हैं, अपना विषय चलेगा ना, काल अंतर वाली बातें बात में आएगी, अभी तो हम उसकी संख्या देख रहे हैं। तो कहते उत्कृष्ट संचय की अपेक्षा से ये कथन है, इसलिए उस अपेक्षा से वृद्धि और हानि नहीं है। अगर वो विवक्षा लगाते तो वृद्धि हानि का सवाल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल हमने देख लिया,
वो सबसे उत्कृष्ट उसमें क्या हानि,
हाँ उसमें
क्या बढ़ेगा,
हाँ वो बता ही दिया जितने मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे अधिक नहीं होगी, और उत्कृष्ट संख्या ही बतानी है तो कम का सवाल नहीं है। अतः पूर्वोक्त भागारों का कथन करना बन जाता है, ये कथन गलत नहीं है, क्यों कहा है, उसकी अपेक्षा क्या है वो बताए। अब 71 पृष्ठ पर आए हम, सासादन सम्यक दृष्टि विषयक अवहार काल का, अवहार काल है वो भागहार का प्रमाण, पल्योपम में भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है। पहले हमने यहां देखा था, देखो क्योंकि चौथी गुणस्थान की बात उन्होंने बताई थी भागार की, मुहूर्त वगैरह की बात होती है ना उसकी बात, हाँ हाँ देखो हम अभी जो पढ़ा 71 पेज पर, हेलो 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 ऑन है ना, 71 पेज पर हमने अभी जो बात पढ़ी, पहले दो लाइन, सासादन सम्यक दृष्टि विषयक अवहार काल का, पल्लोपम में भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि जीव राशि आ जाती है। इसके पहले हमने देखा था चौथे गुणस्थान संबंधी जो अवहार काल है वो कितना है, आवली का संख्या तो अभाव, उसका पल्ल में भाग देने पर चौथे गुणस्थान वालों की राशि आती है। ये हमने 69 पेज पर, 65 पर मिला आपको, 68 पर, हाँ 68 पर भी बताना चाहिए,
ऊपर से
तीसरी लाइन में है
असंख्य समय,
उसमें क्या दिया दिखा था हमने पहली लाइन से के आवली का असंख्या अथवा भाग का, आवली में भाग देने पर जो भाग आता है उतना असंख्य सम्य दृष्टि जीवों के प्रमाण निकालने के विषय में अवहार काल का प्रमाण है, यानी इस संख्या से पल्ले को भाग देंगे तो चौथे गुणस्थान वालों की संख्या आती है। आगे आगे वालों के कितने क्या गुना है वो बताए थे, उसका भागार कितना, अब यहाँ देख रहे 71 पेज पर, मैंने सासादन से शुरुआत नहीं की, उन्होंने असंयत से शुरुआत की थी और उससे सम्यक मिथ्या दृष्टि वालों का अवहार काल असंख्यात गुना ये भी बताया था। अब ये सासादन सम्यक दृष्टि के लिए जो कोई अवहार काल का प्रमाण है वो तो बता चुके पहले, किसका कितने गुना है, उसका पल्ले में भाग देने पर कौन सी संख्या आएगी, सासादन वालों की संख्या आएगी, असंख्यात, कौन सा असंख्यात, इसका अवहार काल, इसका अपना अवहार काल। अब वर्ग स्थान में जैसे हमने मिथ्या दृष्टि को अनंत कहा था, फिर उसको तो इन्हें 13 कहा था, और फिर वो अलग अलग वर्ग स्थानों में भाग देकर वही संख्या निकाली, अब ऐसे यहां कहें कि वर्ग स्थान में खंडित भाजित विरलित अपहृत प्रमाण कारण निरुक्ति और विकल्प के द्वारा सासादन सम्यविष्टि जीव राशि का प्रमाण कहते हैं। अपहृत करना है भाग देना है, वो तो अलग अलग प्रकार से बता रहेंगे आपको, क्योंकि सब जगह वही बात होगी। खंडित में भी कुछ भाग तो देना ही पड़ता है। असंख्यात आवली के समयों का जितना प्रमाण हो, हमने वो बात देखी कि चौथे गुणस्थान वाले के लिए आवली का असंख्यात भाग है, उसको अन्य आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर वो असंख्यात आवली हुए थे, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया था, स्वामी ने सिद्ध किया था। यही बात यहाँ बता रहे कि असंख्यात आवली के समयों का जितना प्रमाण हो, वो भी असंख्यात ही होगा, परंतु विशिष्ट पर्टिकुलर असंख्यात है, उतने पल्योपम के खंड करने पर, यानी उतने हमने उसके टुकड़े किए, पल्ले के इतने टुकड़े किए, उनमें से एक खंड के बराबर सासादन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण होता है। बात तो वही है, नहीं समझे? हमारे पास 1000 संख्या है और उसमें हमने 100 टुकड़े किए, तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आई? 10। यहाँ ऐसा ही करना है, पल्ले के कितने उसके जो हाँ असंख्यात आवली के समयों का जितना प्रमाण है, उसका अर्थ है इसका जो इतना आभार काल है, यानी इसका भागार जितना है, उतने खंड करो, तो जो लब्ध राशि आएगी वही एक खंड की वैल्यू होगी। बात तो वही, उसको भाग दे दो, कहो भाजित कहो, खंडित कहो, विरलित कहो, शब्द अलग अलग आएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन अलग आएगा, वैल्यू तो उतनी उतनी आनी है। क्या किया, जैसे 1000 के हमने 100 खंड किए तो एक की वैल्यू 10 आई, ऐसे पल्ले के हमने कितने खंड किए असंख्यात आवली जो सासादन का आवार काल है, उतने खंड किए, तो एक खंड के बराबर सासादन समय दृष्टि जीव है, खंड के बराबर है ना, वो खंड की जितने समय की वैल्यू होगी उतने। इस प्रकार खंडित का वर्णन समाप्त, पहले भी ये मिथ्या दृष्टि में खंडित भाजित विरलित ये सब शब्द आए थे। उदाहरण
यहाँ पर जो बताया है
हाँ,
कि असंख्यात आवली के समयों का जितना प्रमाण हो, यानी एक आवली इतना प्रमाण लेना क्या, असंख्यात आवली का एक प्रमाण लेना,
असंख्यात आवली का टोटल प्रमाण लेना। जैसे हम कहते हैं असंख्यात लोक में क्या कहते हैं, एक लोक मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, ऐसे एक आवली के समय कितने जगन युक्त असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर असंख्यात, उसको असंख्यात आवली कहेंगे। असंख्यात लोग जैसा असंख्यात आवली, उसका जितना टोटल प्रमाण है उसकी बात है। इसलिए उदाहरण उन्होंने ले लिया, पल्ले के लिए 65 समझ ले, तो पल्लोपम प्रमाण 65536 के सासादन सम्यक दृष्टि विषयक अवहार काल 32, ये इसका भागार हमने 32 मान लिया, इतने खंड करने पर, उसका अर्थ क्या है 32 से भाग देने पर, बात एक ही है पर हम कहेंगे उसके इतने खंड कर दिए, 2048 आते हैं, यही सासादन सम्य दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। भाग देंगे पल्ले को डायरेक्ट तो वही संख्या आने वाली लब्ध राशि, एक एक खंड की भी उतनी वैल्यू है। अब भाजित का कथन करेंगे, ऊपर बता ना खंडित भाजित विरलित, हर एक में उत्तर तो वही आने वाला है। अब कहते असंख्यात आवलियों का पल्योपम में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे, जो हमारा रेगुलर भाग आ रहा भाग, ये हम कहते हैं ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उतना सासादन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। हमने भाग देकर लब्ध को लिया, वहां खंड करके एक खंड की वैल्यू ली, यहाँ भाग देकर डायरेक्ट लब्ध राशि को हम सासादन की राशि कहेंगे। ये भाजित का कथन समाप्त हुआ, उसके लिए उदाहरण 65536 डिवाइडेड बाय 32, रेगुलर हम गणित करते वैसा 2048 सासादन समय दृष्टि जीवों की संख्या मिलेगी। खंडित कहेंगे यही सब जगह आने वाला है, विरलित में भी ऐसा ही होने वाला है। अब विरलित का कथन कह रहे, असंख्यात आवलियों को विरलित करके, असंख्यात आवली हमें 32 को विरलित करना है, एक 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 32 बार लिखेंगे। उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति पल्लोपन के समान खंड करके देय रूप से देने पर, समान खंड करेंगे तो खंडित में हमने 2048 आए थे तो हर एक के प्रति 2048 देंगे। उनमें से एक खंड प्रमाण यानी एक विरल एक का जो एक विरलित राशि है उसके ऊपर जो लिखा है वो एक खंड का प्रमाण वही उसका है। यानी विरलित पहले खंड कहो या विरलित करके खंड कहो एक ही बात है। एक खंड प्रमाण सासाधन समय दृष्टि जीव राशि होती है। इस प्रकार विरलित का वर्णन समाप्त हुआ। हमेशा हम वो विरलन देय करते उसमें गुणाकार करते हैं, कुछ नहीं करना, एक के ऊपर कितना आता है बस इतना ही लेना है। देखो उदाहरण, एक 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 लिखा है तो इस प्रकार 32 बार विरलित करके 65,536 को उक्त विरलित राशि प्रत्येक एक पर समान रूप से दे देने पर, यानी हर एक के ऊपर कितना होगा 2048 32 बार, तो यही सासाधन समय दृष्टि राशि आ जाती है। ये एक विरलन के प्रति जो आया वही उसका प्रमाण है। हमें तो क्या करना है, भागी दें कि हमको देखना है ना। अब अपहृत के रहेंगे, अपहृत का अर्थ देखो सासाधन समय दृष्टि विषय 72 पेज सासाधन समय दृष्टि विषय अवहार काल को जो हम भाग देते हैं ना वो संख्या असंख्या तावली यहाँ कही थी उसको शलाका रूप से स्थापित करके, वो हमारी एक शलाका राशि है, पल्लोपम में से सासाधन समय दृष्टि जीव राशि के प्रमाण को घटा देना चाहिए। इन्हें क्या करना, एक बाजू वो शलाका ने वो संख्या लिखना कितनी सासाधन समय दृष्टि की उसका जो अवहार काल है यानी कितना है 32 है, एक बाजू 32 लिखेंगे और एक बाजू सासाधन समय दृष्टि की जीव राशि लिखेंगे। तो कहते ये पल्ल लिखेंगे, एक बाजू क्या लिखा शलाका 32 और एक बाजू लिखा पल्ल, वो 32 में से एक निकालेंगे तो यहाँ पूरी सासाधन की जीव राशि निकालेंगे, वहां से एक संख्या निकालेंगे तो यहाँ 2048 निकालना, 2048 है ना। हाँ देखो फिर पर शला कहने वो एक राशि वो संख्या वो अलग उसके नाम थे वो शला का, वैसे वर्गशला का कहते हैं ना वर्ग नंबर ऑफ वर्ग स्थान शलाका किसी संख्या को कहने में आता है शलाका। हाँ एक बाजू 32 एक बाजू पल्ले कि पल्ले में से जितनी सासाधन समय दृष्टि उसको निकालो और 32 में से एक कम कर दो। पुस्तक है क्या आपके पास? हाँ वो नीचे ले वो देखा बैठने को मंजू थे क्यों अरविंद भाई का भी पुस्तक है अंदर। ठीक देखो यहाँ सासाधन समय दृष्टियों की राशि की संख्या निकाल रहे हैं कितना है पल्ले का असंख्यात्व भाग, तो पल्ले को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देना है तो कौन से संख्या से, तो उसको कहेंगे असंख्यातावली से, उसको भी अंतर्मूर्त कह दिया। अब उसको अलग अलग पद्धति से उसको कहेंगे खंडित भाजित विरलित ये प्रकार बता रहे हैं। यानी पल्ले के बदले उन्होंने पनट्ठी मान ली 65,536 और ये जो भाग देने की संख्या है वो 32 मान ली तो उसके 32 खंड करेंगे तो एक की वैल्यू 2048 तो खंडित हुआ। डायरेक्ट हम भाग देंगे पनट्ठी को तो भी उतनी वैल्यू है वो भाजित हुआ, 32 को विरलित करो एक अरे वो पनट्ठी को समान रूप से बांट दो तो भी एक की वैल्यू 2048 आ गई वो हो गया विरलित।
मुझे ऐसा लगता है यहाँ अपहृत का अर्थ माइनस करना है।
हाँ माइनस करना यहाँ पर घटा देना हाँ। परंतु एट अ टाइम कितने विशिष्ट संख्या में घटा देना,
यहाँ पे पल्लोपम में जो पनट्ठी लेना है ना इधर
हाँ पनट्ठी
पल्ले नहीं लेना है
नहीं नहीं पनट्ठी पल्लोपम में से ये बाद में उदाहरण के लिए हम पनरती कह रहे हैं। एक बाजू पल लिखना, एक बाजू सासाधन वालों का आवाहर काल लिखना, तो समझाने के लिए एक बाजू पनरती लिखो और एक बाजू 32 लिखो। अब क्या करना, यहाँ सासाधन की राशि एक बार निकालो और 32 में से एक कम कर दो। ऐसा नहीं, वहाँ एक निकाला तो ऐसी राशि कितनी बार निकालेंगे, तो 32 बार निकालेंगे तो वो राशि समाप्त हो जाएगी। बात वही की वही है, हमारे पास 1000 थे और यहाँ हमने 10 संख्या शलाका बनाई, तो उसमें से 100 निकाले तो एक शलाका में से एक कम कर दिया, और 100 निकाले तो और शलाका में, तो शलाका राशि समाप्त हो जाती, उसमें से अपहृत हो जाती। देखो फिर से, यानी यहाँ अपहृत का अर्थ वो माइनस वाली बात, अभी जहाँ जो अर्थ में आता है ना, कहाँ था अवहरंती, अभी अवहार रहने वो तो भागहर कहा। देखो सांसाधन सम्य दृष्टि विषय, पहली लाइन से पढ़ो, पेज नंबर 72। अवहार काल को शलाका रूप से स्थापित करके पल्लपम में से सांसाधन सम्य दृष्टि जीव राशि के प्रमाण को घटा देना चाहिए। पल्लपम में से सांसाधन सम्य दृष्टि जीव राशि को एक बार कम किया, इसलिए अवहार काल रूप शलाका राशि में से एक कम कर देना चाहिए। एट ए टाइम हमने वो जीव राशि निकाली तो एक कम करो, फिर दोबारा निकाली दूसरा कम करो, तीसरी बार निकाले तो ऐसा वो राशि शलाका राशि समाप्त तो होने तक चले जाओ। हाँ, तो कहते फिर भी पल्लोपम में से सासाधन समय दृष्टि जीव राशि के प्रमाण को घटा देना चाहिए। दूसरी बार यह क्रिया हुई, इसलिए अवहार काल रूप शलाका राशि में से एक और कम कर देना चाहिए। ये समझ में है ना क्या करना। इस प्रकार पुनः पुनः करने पर पल्लोपम और अवहार काल एक साथ समाप्त हो जाते हैं, यानी कुछ शेष नहीं रहता। हमने मिथ्या दृष्टि के राशि में ऐसा ही किया था, अपहृत किया था, क्या किया था, हाँ एक बाजू समयों की संख्या रखी थी और यहाँ मिथ्या दृष्टि राशि उसमें से निकाली थी, तो समय खत्म हुए फिर मिथ्या दृष्टि राशि तो रह गई, क्योंकि अतीत काल से अनंत गुना तो उसमें है। यहाँ तो दोनों एक साथ, यानी निशेष भाग हार जाता है अपनी भाषा में। इस क्रिया में एक बार जितनी राशि घटाई जावे उतना सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। ये तो हम प्रमाण है, मालूम है, तभी तो इतनी उतनी घटाई हमने। और ये कैसे निकालेंगे, तो एक बाजू जो पल्ले रखा है उसके अवहार काल से भाग देंगे तो निशेष भाग जाना चाहिए, जो राशि आएगी वो सासाधन वालों की है। हम करेंगे तो भागहार के प्रमाण में उसका प्रमाण निकालेंगे। अभी वो इस प्रकार अपहृत का कथन समाप्त हुआ। जो उसका उदाहरण, शलाका राशि 32 और पल्लोपम में 65,536। एक्चुअली 32 पल्लोपम ऐसा नहीं है, 32 वहाँ तो एक फुल स्टॉप दे दो, वो शलाका राशि 32 है, वहाँ एक लकीर दे दो, वो
भी कर सकते
हैं, कॉमा करो या लकीर करो। और पल्लोपम जो है वो 65,536 है, पल्लोपम के आगे एरो करो तो भी चलेगा। अब क्या किया, देखो उसके 32 के नीचे एक लिखा और उसी समय पल्लोपम में से 2048 माइनस कर दिए, बीच में माइनस की साइन नहीं है परंतु उन्होंने लिख दिया है बीच में, तो माइनस करेंगे तो नीचे कितने रह गए, 63,488 और यहाँ 31 रह गए। 32 में से एक कम किया और वहाँ उसमें से एट ए टाइम सासाधन राशि वो कम कर दी। तो देखो यहाँ राइट साइड में क्या लिखा, इस क्रम से पल्लोपम में से 2048 और शलाका रूप भागार में से एक एक कम करते जाने पर दोनों राशियां एक साथ समाप्त होती है, क्योंकि 31 में से एक घटाओ 30 रह गए और इसमें से 2048 घटाओ तो 61,440 रह गए। ऐसे करते जाओ, 2048 वो सासाधन की राशि, यानी इसमें से एक एक निकालो और उसमें से उतने, और 32 क्या था, भागार था हमारा, जिसको हमने अवहार काल कह दिया था। क्योंकि भागहार का प्रमाण समयों में गिन रहे हैं, इसलिए उसको काल कह दिया। अवहार यानी जिस राशि से भाग देते उसको अवहार कहा। दोनों राशियां समाप्त होती। इनमें से एक बार घटाई जाने वाली संख्या 2048 प्रमाण सासाधन समन्वयष्टि है। अब ये हमारे हुए खंडित, भाजित, विरलित और अपहृत। अब प्रमाण की बात बताएंगे। उस सासाधन समन्वयष्टि जीव राशि का प्रमाण पल्लोपम का असंख्यात वा भाग है। वो कौन सा पर्टिकुलर असंख्यात है? पल्ले को असंख्यात भाग से भाग देकर वो संख्या आती है, तो कौन से वो कितनी होती है, उसका प्रमाण कितना है? तो कहते जो पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, यानी पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। जैसे हम कहते ना असंख्यात लोक कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लोक को असंख्यात से गुणा करते हैं। यहाँ क्या करना है? पल्ले का प्रथम वर्गमूल है उसको असंख्यात से गुणा करना, ये कहना चाहते हैं। अभी उसका उदाहरण हमारे संख्या में बताएंगे वो, यानी उसको कैसे लिखेंगे हम संदृष्टि में, मालूम है? पल्ले के लिए प लिखते हैं और वर्गमूल की साइन कैसे करते हैं मालूम है? हाँ ऐसा, ये पल्ले वर्गमूल पल्ले और कितने असंख्यात, और पढ़ते समय ऐसा पढ़ते असंख्यात प्रथम वर्गमूल। कैसे पढ़े जाते संख्या 84? पहले चार का नाम लेते फिर 80 का नाम लेते, ये ऐसे ही लिखते हैं और पढ़ेंगे ऐसे असंख्यात प्रथम वर्गमूल। ये असंख्यात की साइन है, इंग्लिश लेटर स्मॉल ए जैसी, वो असंख्यात और उसके पहला वर्गमूल, पल्ले का प्रथम वर्गमूल। ऐसे प्रथम वर्गमूल कितने बार लेना? असंख्यात बार, यानी उसको मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। अभी इसको यहाँ समझाएंगे, अपने उदाहरण में समझाएंगे। पल्लोपम 65536 का प्रथम वर्गमूल 256 है और सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048 है। 256 का 2048 में भाग देने पर 8 आते हैं। इस 8 संख्या को असंख्यात रूप मान लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि, यानी ये 2048 क्या है, तो 8 गुना पनट्ठी का प्रथम वर्गमूल है। वहां हम असंख्यातों को हम यहाँ छोटी संख्या में बता रहे हैं, इसलिए हम 8 गुना कहेंगे। 8 भी असंख्यात है और वो प्रथम वर्गमूल भी वो पल्ले का संख्या था, हम पनट्ठी पर घटित करते हैं। तो 2048 ये संख्या क्या है? तो पनट्ठी के प्रथम वर्गमूल 8 गुना, यानी 8 गुना प्रथम वर्गमूल पनट्ठी।
ये जैसा आपने पाटी पर लिखा है वैसा ये अंक में लिखना है, तो
अंक में ऐसा लिखेंगे हम, ये 8 गुना करेंगे ना उसको, वहां पनट्ठी 65536 हम उसमें लिखेंगे वर्गमूल के साइन में मल्टीप्लाइड बाय 8। ये कितना आया? 256 गुना 8 2048। अड़तालीस को इससे भाग दो ना, तो समझ में किसे गुणा करना चाहिए? जिससे हमने भाग दिया उसी से गुणा करेंगे, वो संख्या आएगी। चल में आती
है 65536 का जो प्रथम वर्गमूल है
वो 256 है,
उसको
8 गुणा करो,
8 से असंख्यात भाग,
प्रथम वर्गमूल को 8 गुणा करो, तो 8 × 48 चले 4, 8 × 40 = 44 चले 4, 8 × 16 = 20 2048 आ गया। ये तो उदाहरण देके समझाते हैं, तो हमें छोटी संख्या हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए वो तो समझने में आसान है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, यह असंख्यात प्रथम वर्गमूल का अर्थ क्या है, प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। सासाधन सम्मिलिष्टि जीव राशि होती। अब आगे शंका, ये प्रमाण हो गया, अब कारण पूछ रहे हैं। पहले देखो, पहले पेज पर 71 पेज पर तीसरी लाइन में क्या बताया था, अब वर्ग स्थान में खंडित भाजित विरहित विरलित अपहृत प्रमाण, यहां तक हमने देखा। अब कारण निरुक्ति और विकल्प के द्वारा बताएंगे, तो ये कारण पूछ रहे हैं शंकाकार। तो कहते किस कारण से पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण सासाधन सम्य दृष्टि जीव राशि आती है, ऐसा कारण क्या है उसका। तो कहते समाधान, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर पल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है। हमने पहले देखा था क वर्ग डिवाइडेड बाय क इज इक्वल टू क, अभी क वर्ग के बदले ऊपर क रखो और नीचे क का वर्गमूल रखो, क को क के वर्गमूल से भाग देंगे तो क का वर्गमूल आएगा, क्योंकि वर्गमूल गुना वर्गमूल वो राशि आती है। 16 क्या है तो 4 गुना 4 16 है, तो जो 4 गुना 4 16 है, यानी प्रथम वर्गमूल गुना प्रथम वर्गमूल 16 राशि आती है। तो 16 को 4 से भाग देंगे, प्रथम वर्गमूल से भाग देंगे तो प्रथम वर्गमूल ही उत्तर आएगा, ये कहना चाहते हैं। यहाँ तक ख्याल में आई बात। देखो, पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर पल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है, ये तो आसान बात है ना
एकदम।
उसी के दूसरे वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण हो उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। नहीं समझे, अभी यहां समझेंगे। अभी हम वही अपना उदाहरण लेते हैं, पल्य को पल्य के प्रथम वर्गमूल से भाग देंगे तो वर्गमूल पोया आएगा, क्योंकि इसके इसके गुणा करने से पल्य आता है ना। यहां तक बात खड़े में, अब क्या करना है, हाँ पल्य को दूसरे वर्गमूल से भाग देना है, पल्य डिवाइडेड बाय द्वितीय वर्गमूल, तो संख्या क्या आएगी। ये वर्गमूल का वर्गमूल है,
प्रथम वर्गमूल आएगा, प्रथम वर्गमूल आएगा।
नहीं देखो, पहले हमने क्या किया था ये तो मालूम है, प्रथम वर्गमूल से भाग दिया तो प्रथम वर्गमूल संख्या आएगी। अब क्या करना है, प्रथम वर्गमूल का प्रथम वर्गमूल है, देखो ये द्वितीय वर्गमूल गुना द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल था, इससे भाग दिया तो ये संख्या आएगी। ये समझ में आती है बात, हाँ ये दोनों का ये प्रथम वर्गमूल ही तो है, इसको गुणा करो तो प्रथम वर्गमूल आएगा। आगे किस स्टेप कहने के लिए हमने पहली संख्या डिवाइड करके बताई आपको, अभी इसको यहाँ ले जाओ, तो हमने क्या किया, अभी पल्ले को द्वितीय वर्गमूल से भाग दिया तो प्रथम वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल आया, ये तो आसान है ना। संख्या में देखो, अब पनट्ठी रखी थी हमने 65536, उसको 256 का भाग दिया तो आ गए 256। अभी तो 256 का मूल 16 है, तो 65536 यानी पनट्ठी को, ये पनट्ठी को 16 से भाग देंगे तो क्या होगा, अब ये 16x16 से ये संख्या बनी है, ये 16 इधर भेज दो ना, हम इसका वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल का वर्गमूल किया तो यहाँ वो जो संख्या हमने यहाँ तो ये राशि 16 गुना 16 गुना से होती है 256, उसमें से हमने 16 को रखा और 16 को गुणा का रूप 16 को निकाल दिया, वो लब्ध राशि में जाके मिलेगा। तो वहाँ यहाँ 16 से भाग दिया तो 256 गुना 16 आ जाएगी। अब आगे देखो, तृतीय वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ 4 गुना 4 में से हमने 4 रखे और ये 4 को अभी यहाँ से निकाल दिया तो और आगे यहाँ 4 चला जाएगा, इन 256 गुना 64 यहाँ होगा, ये 4 से भाग दिया ऐसा हो जाएगा। भागहार का भागहार नहीं है, भागहार के दो हिस्से हैं, भागहार के एक खंड है, एक खंड है वो तो वहाँ लब्ध राशि में गुणकार रूप से जाएगा। ये भागहार का भागहार यहाँ पर ऊपर जाता है, उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ, एक खंड लब्ध राशि के गुणकार में जाता है, जैसे हमने देखा ना यहाँ 12 से भाग देते हैं, उसके बदले 4 गुना 3, उसमें से एक खंड रखो बाकी दूसरा खंड लब्ध को मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो पहले अपने गणित हुए थे ऐसे, ये समझ में कि क्या कहने कैसे कह। तो पर्टिकुलर जो कोई असंख्या से हम भाग दे उसी विरूप धारा में से वर्गमूल का वर्गमूल का आठवां वर्गमूल निकालो ना, तो वो क्या हो जाएगा, सारे प्रथम वर्गमूल को गुणित प्रमाण में हो गए, वो असंख्यात की संख्या, असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो गए। पहले मैं 8 गुना प्रथम वर्गमूल वहां निकाली थी संख्या, तो ऐसे यहाँ की कोई भी संख्या ले लो वो कितनी आई, तो असंख्यात गुना प्रथम वर्गमूल, क्योंकि वो वर्गमूल के कितने वर्गमूल चले जाओ कौन सी राशि से गुणा करेंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। अभी यहाँ पनट्टी को ये 256 को हमने 8 गुना कर दिया था 2048 निकालने के लिए, तो ये इस स्थान पर पनट्टी है उसका प्रथम वर्गमूल 256 है, उसका द्वितीय वर्ग पनट्टी का द्वितीय वर्गमूल 16 है और उसका 4 है, ये 2 का वर्ग था, तो 4 गुना 2 ये भी असंख्यात है, उससे इस प्रथम वर्गमूल को गुना किया तो 2048 आए थे। किसी भी आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उसको असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहलाएंगे, यही कह रहे हैं यहाँ पर। यानी राशि में बताना है तो 65536 को हमने 4 का भाग देंगे, तो 256 को 64 से गुणा करना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या 65536 को 256 का भाग देते हैं तो 256 आते हैं, पनट्टी डिवाइडेड बाय 256 यानी 65536 डिवाइडेड बाय 256 तो 256 आते हैं। अभी इसके दो खंड करो ना, ये 256 के बदले हम 4 गुना 64 लिखेंगे, तो 4 को रखो यहाँ पर तो 64 लब्ध राशि में चला जाए। हमने 16-16 करके बताए थे आपको, पहले 16 फिर 4 ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप बताए थे, अभी मैं डायरेक्ट 4 की बात बता रही हूँ। बीच में एक 16 वाली स्टेप लिख के फिर आगे वाली भी लिख सकते हैं आप इसको। यानी पनट्टी को 16 से भाग देंगे तो प्रथम वर्गमूल 256 को 16 से वहां गुणा करना पड़ेगा। देखो ये समाधान हम फिर पढ़ते हैं, 72 पेज लास्ट 2 लाइन, पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्ल्योपम में भाग देने पर पल्ल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है, उत्तर उतना आता है लब्ध राशि, उसी के दूसरे वर्गमूल का पल्ल्योपम में भाग देने पर दूसरा वर्गमूल है ने वर्गमूल का वर्गमूल, दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण हो उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। यानी दूसरे वर्गमूल का भाग दिया है तो क्या होगा उत्तर? प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय द्वितीय वर्गमूल, इसको कहते हैं दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण हो उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। पल्योपम के तीसरे वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर दूसरे और तीसरे वर्गमूल के प्रमाण का परस्पर गुणा करने से, तो गुण हुआ गुणा करने से जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल लग जाते। हमने आपको पनट्टी की बात बताई थी, पनट्टी को प्रथम वर्गमूल 256 से भाग दिया तो प्रथम वर्गमूल यानी 256 उत्तर आया था। प्रथम वर्गमूल का वर्गमूल 16 से भाग दिया तो वहां 256 मल्टीप्लाइड बाय 16 हुए। अब 16 का भी वर्गमूल तृतीय वर्गमूल हुआ पनट्टी का, तो पनट्टी को उसके तृतीय वर्गमूल से भाग देते हैं तो लब्ध राशि प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय द्वितीय वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय तृतीय वर्गमूल आता। ये ख्याल में आई बात? हाँ देखो यहाँ फिर यानी पल्ल डिवाइडेड बाय द्वितीय वर्गमूल इज इक्वल टू द्वितीय वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय प्रथम वर्गमूल। द्वितीय वर्गमूल का जितना प्रमाण हो उतने प्रथम वर्गमूल आते, उतने आते हैं ना उतनी बार आते हैं ना उसको उससे गुणा करना। जैसे हमने मल्टीप्लाइड बाय 16 यानी 16 प्रथम वर्गमूल आए यानी 16 बार 256 आए, है ना। इसका वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। हाँ, अब पल्योपम के तीसरे वर्गमूल का पनट्टी का पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16, तीसरा वर्गमूल 4। पनट्टी को अगर 4 से भाग देते हैं पल्योपम में भाग देने पर दूसरे और तीसरे वर्गमूल के प्रमाण का परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण आवे, दूसरा वर्गमूल 16, तीसरा वर्गमूल 4, 64 आए, उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं यानी 256 को मल्टीप्लाइड बाय 64 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, तीसरा वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय पहला वर्गमूल। इस क्रम से असंख्यात वर्ग स्थान नीचे जाकर देखो हमारी जो वर्गधारा है ना द्विरूप वर्गधारा 4, 16, 256 और पनट्टी। अब हम पनट्टी को डायरेक्ट 4 से भाग देंगे, द्विरूप वर्गधारा का ही वो वर्ग स्थान होना चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशन वर्ग स्थानों में दिखा रहे थे। तो पनट्टी को 4 से भाग देंगे तो संख्या क्या आएगी कि 4 के आगे जितने वर्ग स्थान है प्रथम वर्ग मूल तक उनका सबका परस्पर गुणा करो, 4 गुणा 16 से 256 को गुणा करो। अब ये 2 से भी भाग देते तो कौन सी संख्या आती है, 2 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 256, सब ये सब वो उसकी संख्या आ जाएगी। तो हमारा पल्ल कितने आगे चलकर है, ये ओरिजिनल पल्ल पनट्टी वाला नहीं, ओरिजिनल जो पल्ल की संख्या है उसके पहला वर्ग स्थान है प्रथम वर्गमूल। अभी उसके बहुत छोटी राशि से उसको हमने भाग दिया है क्योंकि वो कितना अंतर्मूल प्रमाण या जो कुछ हमने संज्ञातावली कहा है वो तो बहुत पूर्व में आ चुकी वो राशि, तो सबका आपस में गुणा करते जाओ, इसके साथ उसका गुणा करो तो ये पल्ले को उसके भागार का प्रमाण आ जाएगा।
तो उसी को पल्ले का असंख्यात वर्गमूल,
उसको असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहा,
असंख्यात
प्रथम वर्गमूल, ये लब्ध राशि इतनी आती है। राशि तो बड़ी है ना, उस भागार का प्रमाण हम अभी देख रहे थे, हम अवहार कालों का प्रमाण, वो 32 और 2048 में कितना फर्क है।
उदाहरण
ये उदाहरण ये हो गया ही, जरा तीसरी लाइन से फिर पढ़ते हैं, 73 पेज थर्ड लाइन। इस क्रम से असंख्यात वर्ग स्थान नीचे जाकर, उनसे द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात वर्ग स्थान नीचे जाकर जो असंख्यात आवलिया स्थित है, क्योंकि आवली भी द्विरूप वर्ग धारा में आती है जगन्युक्त संख्या, फिर उसके आगे का स्थान प्रतरावली होगा, उसके आगे जो कुछ यथा योग्य आवली गुना आवली भी असंख्यात असंख्यात आवली हो जाती है, जो कोई पर्टिकुलर आवली है असंख्यात उसका भाग देने पर, सॉरी ये कहाँ है तो द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात स्थान नीचे है, आगे असंख्यात स्थान जाने के बाद पल्ल्य आता है, तो कहते कि इस क्रम से असंख्यात वर्ग स्थान नीचे जाकर, वर्ग स्थान नीचे जाकर का अर्थ समझ में आता है पल्ले के पूर्व में चले जाओ पीछे चले जाओ, एक एक स्थान पहले गए तो पल्ले का वर्गमूल आया, दूसरा स्थान तीसरा, अभी असंख्यात स्थान नीचे आ जाओ जो असंख्यात आवलिया स्थित है, यानी द्विरूप वर्ग धारा में जो कोई पर्टिकुलर संख्या स्थित है उनका पल्ल्योपम में भाग देने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं, प्रथम वर्गमूल है पल्ले के प्रथम वर्गमूल, असंख्यात प्रथम वर्गमूल ने हम वर्गमूल प लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार कारण का वर्णन समाप्त हुआ, जो पहले उन्होंने जो बताया था उसी का ये कारण बता चुके, क्योंकि प्रमाण में जो संख्या बताई वो कैसी आई वो ये कारण में आ गई। उदाहरण पल्ले के प्रथम वर्गमूल 256 का 65536 में भाग देने पर 256 लब्ध आते हैं, दूसरे वर्गमूल 16 का 65536 में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 बार 256 अर्थात 4096 लब्ध आते हैं, यानी 256 मल्टीप्लाइड बाय 16 आ गए, तीसरे वर्गमूल 4 का 65536 में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 और तीसरे वर्गमूल 4 को परस्पर गुणा करने से जो 64 लब्ध आते हैं उतने अर्थात 64 बार प्रथम वर्गमूल 256 यानी 256 मल्टीप्लाइड बाय 64 हो जाएगी अर्थात 16384 लब्ध आते हैं। ये समझ में आती बात, अभी जो हमने देखा वही बात। इसी प्रकार उत्तरोत्तर नीचे जाने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध आवेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी जितनी और छोटी असंख्यात से भाग उसको हम देंगे भाग मूल पल्ल्य को उतने लब्ध राशि में प्रथम वर्गमूल उतने असंख्यात गुणा हो जाएगा, यानी जो संख्या आने वाली है ना असंख्यात प्रथम वर्गमूल का अर्थ क्या है, हमारी पल्ल्य राशि है और उसके पहला वर्ग स्थान है पल्ले का प्रथम वर्गमूल, तो ये प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, कौन से असंख्यात, उसके पहले के सभी जो वर्ग धारा के जितने स्थान है उसका आपस में गुणा करो, यानी वो राशि कितनी बड़ी हो जाएगी ना इन बिटवीन पल्ले का वर्गमूल और पल्ले, बहुत नीचे की नहीं है, पल्ले का असंख्यात वा भाग उसमें लिमिटेड है, ये कहना चाहते। शंका, असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं इसकी निरुक्ति क्या है, निरुक्ति ने वो कैसे तैयार हुआ है? समाधान,
निरुक्ति का अर्थ उत्पत्ति हो,
उत्पत्ति निरुक्ति उत्पत्ति, तो देखो असंख्यात आवलियों का पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, अभी हमने देखा था ना, यानी हमने क्या देखा था असंख्यात आवलियों का, अभी असंख्यात आवली के बदले हम 32 मान लेते जो हमारा आवार काल है, पल्ल्य के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर कितने आते हैं तो 8 आते हैं, 256 में भाग देंगे तो 8 आते हैं, उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, हमने देखा ना 2048 इतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, अथवा असंख्यात आवलियों का पल्ल्योपम के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित कर देने पर जितना प्रमाण आवे उतने पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल होते हैं। अभी यहाँ उन्होंने संख्या ही 32 ली है, इसलिए यहाँ ये घटित नहीं होता है। यहाँ क्या कहना, हम दूसरी बात, अगर दूसरा अगर हम उदाहरण लेके देखेंगे, हमको अगर दूसरी कोई संख्या निकालनी है जो 256 के मल्टीप्लिकेशन में आती है, हम चार से देखते हैं, चार का 256 में भाग देने पर, देखो असंख्यात आवली के बदले अगर हम चार पकड़ते हैं तो चार को हम पल्ले, इन्हें पनट्टी को चार से भाग देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, 256 मल्टीप्लाइड बाई विशिष्ट संख्या आएगी, तो कितनी आएगी, इसको कौन सी संख्या से गुणा करना, तो 256 डिवाइडेड बाई चार से, 256 गुणा 64, पनट्टी डिवाइडेड बाई चार इज इक्वल टू 256 गुणा 64, ये कहना चाहते हैं। अब दूसरा पद्धत के अथवा कहकर, क्योंकि वो 32 वाला उदाहरण वहां फिट होता नहीं, इसलिए मैंने चार संख्या ली, अगर हम चार मान लेते तो क्या होता, अथवा असंख्यात आवलियों का यानी चार का पल्ल्योपम के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे, अभी चार का इसको भाग दिया चार आया, लब्ध आवे उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित कर देने पर, सेकंड लाइन फिर पढ़ती हूँ, अथवा असंख्यात आवलियों का पल्ल्योपम के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर, अभी हमारे यहाँ 16 को भाग देने पर जो लब्ध आवे ने चार आया उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित करने पर, 16 को गुणित करो, जितना प्रमाण आवे उतने पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल होते हैं, वही ना, पहले चार चौक 16 किया, 16 चौक 64 किया और उससे इसको गुणा किया, बात वही आई। अथवा असंख्यात आवलियों का पल्ल्योपम के तीसरे वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे तीसरे वर्गमूल को गुणित करके, अभी मान लेते चार को, चार को भाग देंगे तो एक लब्ध आया, उसको इसी से गुणा करो, चार आ गया, उस गुणित राशि से दूसरे वर्गमूल को गुणित करके, चार चौक 16, वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, कहीं पर भी जाओ कितने ही राशि पहले चले जाओ ऐसा ही होगा, ख्याल में आती है बात। अभी हम पनट्टी तक रुके, पनट्टी के आगे बादाल है, बादाल के आगे इकट्ठी है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, अगर 16 से हम इकट्ठी को भाग देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले 16 से 16 को भाग दो, एक आया, फिर आगे की सारी संख्या जो उससे आपस में गुणा करो, 256 मल्टीप्लाइड बाय पनट्टी मल्टीप्लाइड बाय बादाल इंटू बादाल, क्योंकि ये इकट्ठी का प्रथम वर्गमूल है, इसलिए हम आगे नहीं जाते कि वो तो कठिन हो जाता है इमेजिन करने के लिए। मैंने जिस किसी विरूप वर्ग धारा के जिस किसी असंख्यात का भाग दिया है उसके आगे जितने हैं उन सारों का गुणा करके उससे वो प्रथम वर्गमूल को गुणा करना है, यानी प्रथम वर्गमूल तक मत जाना, चार से भाग देना है तो चार और 64 को गुणा करके उससे इसको गुणा करो, अब दो से भाग देना होता पनट्टी को तो इसका प्रथम वर्गमूल निकाला और फिर दो के आगे दो चार और 64 है उसका आपस में गुणा करके इसको गुणा करो उतने आ जाएगी, ये कहना चाहते हैं। देखो पेज नंबर 73 नीचे से दूसरी पंक्ति, इसी क्रम से असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर असंख्यात आवलियों का प्रत्रावली में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे प्रत्नावली को गुणित करके। देखो ये हमारी द्विरूप वर्ग धारा है, तो पनट्ठी के आगे बहुत सारे वर्ग स्थान जागने पर वहां तो परिता संख्यात आ गई, फिर आगे चलकर हमारी जगन्य युक्ता संख्या संख्या है जिसको हम आवली कहते हैं। आवली के नेक्स्ट स्थान क्या होगा? आवली का वर्ग, उसको क्या कहते हैं? प्रत्रावली। ये प्रत्रावली यहां पर आ गई। अब कहते असंख्यात आवली इन बिटवीन है यहां पर संख्या, और पल्ले तो असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले है, और हमें इस विशिष्ट असंख्यात आवली से पल्ले को भाग देना है, तो संख्या कितनी आएगी? असंख्यात प्रथम वर्गमूल आएगी। तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले में पहले ये जो असंख्यात आवली है उससे आगे का वर्ग स्थान है प्रत्रावली, उसको भाग देंगे। ये देखो करेंगे, देखो असंख्यात आवलियों का मिला नीचे से दूसरी लाइन 73 पेज पर, प्रत्रावली में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे प्रत्रावली को गुणित करके। इसका अर्थ समझ में आता है? आवली के नेक्स्ट स्थान आवली का वर्ग है, इन बिटवीन वाला स्थान क्या है? आवली के असंख्यात गुणा करो, इतना है, क्योंकि आवली मल्टीप्लाइड बाय आवली प्रत्रावली होती है, पर आवली से छोटे किसी संख्या से उसको गुणा करो असंख्यात से, जो उसका आवली प्रमाण नहीं छोटा है,
इसको
आवली को, यानी आवली का असंख्यात वा भाग भी असंख्यात होता है, तो इसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये इन बिटवीन संख्या आएगी। यहां तक बात ख्याल में आती है? क्योंकि इन बिटवीन संख्या से प्रत्रावली को भाग दो और जो संख्या आएगी उससे प्रत्रावली को गुणित करो, उसी से इसको गुणा करो, जिससे भाग देने पर जो आएगी उससे उसको गुणा करो, क्या प्रत्रावली आएगी? भाग देने पर जो संख्या है उसको उसके गुण, तो प्रत्रावली आएगी, प्रत्रावली आएगी। उस गुणित राशि से प्रत्रावली के ऊपरी वर्ग को गुणित करके, जैसे हमने देखा था 2, 4, 16, 256 पनट्ठी, तो 2, 4, 16, 256 पनट्ठी, दो से अगर हमको पनट्ठी को भाग देना है तो कौन सी संख्या आती है? तो इसके आगे के सारे वर्ग स्थानों को आपस में गुणा करो, 4 × 16 × 2 सब इसको इन सहित, इसको सहित लेना, तो 2 × 4 = 8, 8 × 16 = 128 मल्टीप्लाइड बाय 256, इतना उसका उत्तर आएगा। जैसे हमने 4 से भाग दिया तो 64 × 256 आए थे, जिसका भाग देते हैं उस सहित आगे की सभी प्रथम वर्गमूल के द्वितीय वर्गमूल तक की सभी राशियां लेनी है। हमने असंख्यात आवली लेना है तो प्रत्रावली से लेकर पल्ले के द्वितीय वर्गमूल तक के सभी वर्गमूल का आपस में गुणा करो और उस राशि से पल्ले के प्रथम वर्गमूल को गुणा करो, ये संख्या आने वाली है, ये कह रहे हैं।
यानी वो साथ साथ समग्र दृष्टि जीवों की संख्या आएगी।
हाँ,
तीसरे में जाएंगे
तीसरे का उससे ज्यादा हो जाएगा। फिर से पढ़ेंगे ये वाक्य, हमको केवल इसका अर्थ समझना है। देखो हमने क्या, हमारा आवाहर काल क्या है? असंख्यात आवली, पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात आवली। तो ये कैसे निकाला, उसका उत्तर कितना आएगा? तो प्रमाण उन्होंने बता दिया कि पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात से गुणा कर दो, तो उसका कारण भी बताया कैसे, तो वो करके दिखाया था। तो यही बात बताते हैं अभी, उसकी निरूपी कैसे उत्पन्न हुआ, तो द्विरूप वर्ग धारा में जो आवली वाला स्थान है उसके नेक्स्ट वाला स्थान है प्रत्रावली, तो प्रतरावली मल्टीप्लाइड बाय उसका वर्ग मल्टीप्लाइड बाय उसका वर्ग मल्टीप्लाइड बाय उसका वर्ग कहाँ तक चले जाओ, पल्ले के द्वितीय वर्गमूल तक चले जाओ, इन सबका आपस में गुणा करके उससे प्रथम वर्गमूल को गुणा करो तो हमारी लब्ध राशि आ जाएगी। तो 74 पेज पर आ गए, तो उससे प्रतरावली के ऊपरी वर्गों को गुणित करके इस प्रकार कहां तक चले जाना, द्वितीय वर्गमूल पर्यंत सर्व ऊपरी ऊपरी वर्ग स्थानों को निरंतर गुणित करके करने पर वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, यानी उसको हम प्रथम वर्गमूल से गुणा करेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने पनट्ठी को पनट्ठी के तृतीय वर्गमूल से भाग दिया तो संख्या क्या आएगी, तृतीय मल्टीप्लाइड बाय द्वितीय मल्टीप्लाइड बाय प्रथम, यानी तृतीय और द्वितीय का आपस में गुणा करके प्रथम वर्गमूल को भाग। हम मान लेते हैं कि किसी संख्या को पनट्ठी मान लेते हैं या पल्ले मान लेते हैं ना, पल्ले को लिए हम प ही लिखेंगे, पल्ले डिवाइडेड बाय उसका दसवां वर्गमूल। तेजल आपको बताना है, ऊपर हमने प लिखेंगे डिवाइडेड बाय उसका दसवां वर्गमूल, उत्तर कितना आएगा? देखो दसवां वर्गमूल से चालू करो, 10, 9, 8, 7 ये सभी वर्गमूल पहले तक, पहले को अलग लिखना है तो द्वितीय वर्गमूल तक की गुणा करके उसको प्रथम वर्गमूल से गुणा करो। हाँ ये संख्या है, यानी दसवां वर्गमूल इंटू नौवां वर्गमूल इंटू इस आठवां इंटू सातवां इंटू इस तरह से चले जाओ और अंत में प्रथम वर्गमूल रखना। तो ये पहले द्वितीय वर्गमूल तक के सारों के आपस में गुणा करो, ये संख्या असंख्यात आ गई उतने प्रथम वर्गमूल है, यहाँ चले जाते हैं ना, ये संख्या आती है ना, यानी पल्ले से पल्ले और उसके वर्गमूल के बीच वाली संख्या है। हाँ कि असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो जाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखते हैं कि पल्ले डिवाइडेड बाय उसका दसवां वर्गमूल, यानी प या पल्ले लिखो डिवाइडेड बाय हाँ दसवां वर्गमूल, ये वर्गमूल के अंदर 10 की साइन लिखना है जिसे हमने लिखी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, दसवां वर्गमूल इंटू हाँ एक तक दसवां वर्गमूल इंटू नौवां वर्गमूल इंटू आठवां वर्गमूल, इंटू सातवां वर्गमूल, ऐसा करते 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 दूसरा और पहला। ये सारों के 10 से लेकर दूसरे वर्गमूल तक की सभी संख्याओं का जो गुणकार है उसको असंख्यात कहेंगे, असंख्यात प्रथम वर्गमूल। यानी कोई भी संख्या है द्विरूप वर्ग धारा में, उस संख्या को किसी नीचे के स्थान से भाग दिया तो उस स्थान से लेकर प्रथम वर्गमूल तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करो तो वो संख्या है जो वो हमारा भाग है, लब्ध राशि आएगी, लब्ध राशि की बात है। पनट्ठी डिवाइडेड बाय सोलह किया तो उत्तर कितना, लब्ध राशि कितनी आती है, 16 गुना 256। समझ में ना, चार से भाग दिया पनट्ठी को तो 4 गुना 16 गुना 256। पनट्ठी को 2 से भाग दिया तो 2 गुना 4 गुना 16 गुना 256, यानी ये सारी संख्या 256 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी, जितना और नीचे चले जाओ उतना 256 का गुणकार और बढ़ेगा, पर आएगा 256 और पनट्ठी के बीच में, क्योंकि जब हमने 256 का भाग दिया तो 256 आ गए और उसका वर्गमूल से भाग दो तो उसके वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। जगन नियुक्ता संख्यात का वर्ग वो प्रत्रावली है। वही तो, वही जगन्य असंख्याता संख्यात है। प्रतरावली कहो या जगन्य असंख्याता संख्यात कहो, एक ही बात है। नहीं नहीं, किसी संख्या को भाग देंगे तो की बात है, हम पल्ले को भाग दे रहे उस संख्या से, पल्ले को मान लेते हैं प्रतरावली से भाग दे रहे, तो प्रतरावली से लेकर प्रथम वर्गमूल तक के सारे को गुणाकार करो तो हमारी संख्या आएगी, लब्ध राशि आएगी। इसलिए प्रथम वर्गमूल को अलग रखा और द्वितीय वर्गमूल तक के गुणकारों को असंख्यात कह दिया। असंख्यात प्रथम वर्गमूल, पेज नंबर 74। लिखा ना इस प्रकार द्वितीय वर्गमूल पर्यंत सर्व उपरिम उपरिम वर्ग स्थानों को निरंतर गुणित करने पर वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते, क्या लब्ध राशि, क्योंकि हमने पल्ले को विशिष्ट असंख्या से भाग दिया था। इस प्रकार निरुक्ति का कथन समाप्त हुआ। देखो उदाहरण, असंख्यात आवली प्रमाण 32 का भाग पल्ले के प्रथम वर्गमूल 256 में भाग देने पर 8 लब्ध आते हैं। इस प्रकार सासादन सम्यदृष्टि जीव राशि 2048 में 8 ही प्रथम वर्गमूल होते हैं। यानी 2048 जो राशि आई है कैसे आई, तो पल्ले को हमने भाग दिया किसी संख्या से, 32 से भाग दिया, तो कितने आए हैं, तो प्रथम वर्गमूल 256 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ गए। द्वितीय वर्गमूल 16 में 32 का भाग देने पर एक द्वितीयांश लब्ध आता है। ये छोटी संख्या है इसलिए हमको वो अपूर्णांक करके फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। तो द्वितीय वर्गमूल 16 में 32 का भाग देने पर एक द्वितीयांश लब्ध आता है, इसका द्वितीय वर्गमूल से गुणा करने पर 8 लब्ध आता है। मैंने 16 को 32 का भाग दिया, फिर वो 16 से ही उसको द्वितीय वर्गमूल 16 से ही गुणा करो तो 8 आ गए। यानी वो 8 से गुणा करेंगे उसको। तृतीय वर्गमूल 4 में 32 का भाग देने पर एक अष्टमांश लब्ध आता है, वो एक अष्टमांश का दूसरे 16 और तीसरे 4 वर्गमूल के परस्पर गुणनफल 64 से गुणा कर देने पर 8 लब्ध आते हैं। यानी एक अष्टमांश मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, आठ चौसठ आ जाता है। इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए, यानी उतने ही प्रथम वर्गमूल आएगी ना। अब ये अंतिम विकल्प दो प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और ऊपरी विकल्प। अधस्तन है नीचे वाली संख्या, ऊपरी मैंने ऊपर के, उन दोनों में से पहले द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं। आपको याद होगा हमने मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकाली थी, तो वो तो ध्रुव राशि बनाई थी 256 डिवाइडेड बाय 13, तो 16 ये जीव राशि का प्रमाण वो अधस्तन विकल्प में चला गया, और 16 का वर्ग 256 वो ऊपरी विकल्प में चला गया। यहाँ पर भी अधस्तन और उपरिम बताएंगे। तो सबसे पहले द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं। देखो असंख्यात आवलियों से पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर सासादन सम्यदृष्टि जीव राशि होती है। पल्ल्योपम है 65,536, उसका प्रथम वर्गमूल है 256, असंख्यात आवलिया है 8, तो 256 को 8 से गुणा करेंगे तो 2048 आ जाए। हमारा वो भागहार 32 था वो अलग, यानी हमने भागहार डायरेक्ट 32 से भाग दिया था तो भी वही संख्या आई थी। अथवा दूसरी पद्धति बता रहे अवहार काल का 32 का पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे। द्वितीय वर्गमूल 16 है, 16 को 32 का भाग देंगे तो एक द्वितीयांश लब्ध आता है, उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित करके, पहले जिसको भाग दिया उसी को गुणित किया तो 16 से गुणा किया तो 8 आ गए। उस गुणित राशि से प्रथम वर्गमूल के गुणित करने पर, इन 256 को गुणित करने पर संसाधन समय दृष्टि जीव राशि आती है 2048। ये उन्होंने अंकों में करके बताया है कि 65536 का द्वितीय वर्गमूल 16 है, हमारा अवहार काल कितना है 32, तो पहले 16 को 32 से भाग दिया, एक द्वितीयांश आले आ गए, 16 को उससे गुणा किया तो 8 आ गए, तो 256 को 8 से गुणा किया तो 2048 आ गए।
और एक अथवा
पढ़ लेते हैं। अथवा अवहार काल का पल्लोपम के तृतीय वर्गमूल में भाग देने पर, अभी हमारा पनट्टी का तृतीय वर्गमूल 4 है, उसमें भागने 4 32 अंश, जो भाग लब्ध आवे, एक अष्टमांश लब्ध आया, उससे तृतीय वर्गमूल को गुणित करके, 4 को गुणित करना, उस गुणित राशि से, यानी फिर एक द्वितीयांश आ गया, द्वितीय वर्गमूल को गुणित करके, यानी 16 गुणा एक द्वितीयांश, फिर भी उस गुणित राशि से 8 से प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर, 256 को गुणित करने पर संसाधन समय दृष्टि जीव राशि आती है 2048 आती है। यानी कहीं पर भी किसी भी वर्गमूल को उसका भाग दो और फिर उस जो संख्या आएगी उससे उसी से गुणा करो, इस तरह से वो बात आती है। यही उदाहरण उन्होंने अंकों में यहाँ लिखा है, 65536 का तृतीय वर्गमूल 4 है, 4 को 32 से भाग दिया तो एक अष्टमांश आया, 4 को ही वो एक अष्टमांश से गुणा करेंगे तो एक द्वितीयांश आ गए। सोलह को एक द्वितीयांश से गुणा करेंगे तो 8 आ गए, और 256 जो प्रथम वर्गमूल है उसको 8 से गुणा करो, 2048 संसाधन की संख्या आती है, इसलिए सा लिखा वहां पर। अब कहते इसी क्रम से असंख्यात वर्गस्थान नीचे जाकर, क्योंकि हमारा भागार क्या था, असंख्यात आवली, तो पल्ले से असंख्यात वर्गस्थान नीचे नीचे जाकर असंख्यात आवलियों का प्रतरावली में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे प्रतरावली को गुणित करके, उस गुणित राशि से प्रतरावली के उपरिम वर्ग को गुणित करके, आगे आगे के वर्गों को गुणित करते जाना। पहले क्या किया, हमारा जो असंख्यात आवली वाला जो भागहार है उससे प्रतरावली को भाग दिया, जो संख्या ही उससे प्रतरावली को ही गुणा कर दिया, फिर जो ऋषि गुणित राशि से उपरिम वर्ग को गुणित करके चले जाएंगे, इस प्रकार प्रथम वर्गमूल पर्यंत उपरिम संपूर्ण वर्ग स्थानों को निरंतर गुणित करने पर संसाधन समय दृष्टि जीव राशि होती है। पहले कारण और प्रमाण में उन्होंने असंख्यात प्रथम वर्गमूल बताया, अब निरूपति में प्रथम वर्गमूल तक चले जाओ और सबका आपस में गुणा करो, वही बात है ना, उसको अलग करके गुणकार कहो या उसको सहित गुणा करो, बात एक ही है। उदाहरण प्रतरावली 2 है और हमारा असंख्यात आवली का प्रमाण 32 है, ये बड़ी संख्या ली है, वो तो जो कुछ असंख्यात आवली का प्रमाण है, तो कहते 2 को 32 से भाग दिया तो एक 16 अंश आ गए, 2 को ही उससे गुणा किया तो एक अष्टमांश आ गए, आगे आगे सभी संख्याओं को गुणा करना, 4 को एक अष्टमांश गुणा तो एक द्वितीयांश आए, 16 को एक द्वितीयांश से गुणा किया तो 8 आए, उसका आगे का वर्गस्थान 256 है उसको 8 से गुणा किया तो 2048 आ गए। सबका आपस में गुणा कर दो। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप किया, उसके बदले एक द्वितीयांश इंटू इंटू टू इंटू फोर इंटू, इस तरह से सबके ले सकते थे। यद्यपि निरुक्ति का कथन करते समय यह विषय पहले वहां पर कहे आए हैं, तो भी इस विषय के यहाँ पर पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वर्ग धाराओं का आश्रय लेकर स्थित अधस्तन विकल्प का संबंध है। इस प्रकार विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प का कथन समाप्त हुआ। क्या कहना चाहते हैं? पहले बात बताते थे, आप कहते वही बात है, असंख्यात प्रथम वर्गमूल, सभी निरुक्त यानी कारण में वही बात बताइए, निरुक्त में फिर वहाँ क्यों बता रहे हैं? निरुक्त में बताए तो ठीक है, विकल्प में फिर क्यों बता रहे हैं? तो विकल्प में जो अधस्तन विकल्प बता रहे, ये तो अभी द्वितीय वर्ग धारा का हुआ, विरूप घन धारा में भी ऐसा बताएंगे और घनाघन धारा में भी बताएंगे, इसलिए इसका कथन फिर दोबारा किया कि नीचे के स्थान बताने के लिए। पढ़ लेते फिर कल और आगे बढ़ेंगे। अब घन धारा में, घन धारा है ने दो का घन आठ और उसके वर्ग स्थान 64 फिर 4096 इस तरह से। घनधारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं, कहते असंख्यात आवलियों से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, उसका घनपल्य के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर, नहीं समझा, पल्य के घन का प्रथम वर्गमूल, देखा देखा
पल्य का घन,
अभी अभी हमने जैसे कल हमने द्विरूप वर्ग धारा द्विरूप घन धारा देखी थी ना, वैसे अभी यहाँ पर देखना है। वहां तो हमारे मिथ्या दृष्टि जीव राशि थे, इसलिए 16 और 16 का वर्ग के बीच की बात की, वो अनंतों में थी। अब हमारा द्विरूप वर्ग धारा में ये पल्य का स्थान है और उसको भाग देने वाली संख्या यह कोई बहुत पहले ही 32 वाली जो हमने ली थी, और पल्ले के आगे पल्ले का वर्ग होगा, उसका वर्ग होगा वगैरह वगैरह। द्विरूप घन धारा में जहां जो स्थान है, जैसे हमारे यहाँ 256 है 16 है, तो उसका घन इस धारा में आता है 64 है 4096, वो क्या है, ऊपर 16 का घन 4096 आता है, ऐसे पल्ले के स्थान पर यहाँ पल्ले का घन आएगा। हमने क्या देखा था, पल्ले के वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो। अब यहाँ क्या होगा, अधस्तन विकल्प ने पल्ले के घन से नीचे वाले वो अधस्तन विकल्प कहलाएंगे। तो देखो यहाँ फिर इस वाक्य का अर्थ देखते हैं। असंख्यात आवलियों से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, यानी पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय 32 हमारी भाषा में, पनट्टी का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाई बाय करके, वहां तो 8 से गुणा किया था पर हमें ये 32 से गुणा करके, उसका घनपल्ले के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर, वो घनपल्ले कैसा होगा, घनपल्ले पल्ले का घन है जिसको हम पल्ले रेस्टू 3 कहते हैं, प के ऊपर घातांक 3 करना और उसका प्रथम वर्गमूल, दो ये प्रथम वर्गमूल का ये घन होगा, घन का प्रथम वर्गमूल कहो प्रथम वर्गमूल का घन कहो, एक ही बात है, ख्याल में ऐसी बात है। फिर से तो असंख्यात आवलियों से कल फिर पढ़ेंगे, अभी तो फिर पढ़ लेते हैं। पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, उसका घनपल्य के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर सासादन सम्यदृष्टि जीवराशि आती है। ये ऊपर घनपल्य का वर्गमूल लिया और नीचे पल्य का वर्गमूल लिया इंटू 32 लिया, ऐसा है ना, पल्ले का ऐसा ही अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? यही उसका अर्थ हुआ ना, एक वर्गमूल एक वर्गमूल गया तो पल्ले डिवाइडेड बाय 32 आया ना, जादू कर दिया हमने। नीचे हमने 256 गुना 32 रखे और ऊपर ऊपर क्या, पल्ले के घन का प्रथम वर्गमूल ऐसा कहो या पल्ले के प्रथम वर्गमूल का घन कहो, एक ही बात है। तो 256 गुना 256 गुना 256 ये यहाँ आ गया और नीचे 256 गुना 32 आया, एक 256 उड़ गया तो 256 गुना 256 वो पल्ले और डिवाइडेड बाय ये 32। इसको कल फिर पढ़ेंगे शुरू से घन धारा में वहां से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।